नमस्कार, एसबीएस हिंदी से मैं हूं साहिल मकड़, और मेरे साथ मैक्वेरी यूनिवर्सिटी से हैं सीनियर लेक्चरर डॉक्टर दलबीर अहलावत। डॉक्टर अहलावत, आपका एसबीएस हिंदी पर स्वागत है।
धन्यवाद साहिल।
डॉक्टर अहलावत, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मरीस पेन ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें कहा गया है कि जो है क्वाड की एक मीटिंग होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में बहुत जल्दी, जिसके लिए सभी देशों के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया आएंगे। तो इस मीटिंग का क्या मुद्दा होगा?
साहिल, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और ये अहम भूमिका निभाएगी आगे इन चारों देशों का जो क्वेड है उसके मार्गदर्शन के लिए। सबसे पहली अहम बात जो है कि ये जो क्वेड की ये चार फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, ये सितंबर में, सितंबर 2021 में समिट हुई थी चार नेताओं के बीच में, जो कि आइदर दे वो हेड ऑफ द स्टेट थे या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स में मीटिंग हुई थी, जैसे ही जो बिडेन प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इनवाइट किया था ऐसे तीन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट का। तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। तो उसके बाद ये पहली पहली मीटिंग होगी। नंबर दो ये है कि ये फेस टू फेस मीटिंग होगी, ये ऑनलाइन या दूसरे चैनल से नहीं होगी, तो दैट ऑल्सो शोज कि ये बहुत ही अहम है। नंबर तीन ये है कि आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, जबकि जबकि दुनिया में पूरी पावर इक्वेशन बदल रही है, उसमें जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जो उसके नेता हैं वो अपने अपने लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसलिए ये देश सब मिलके अपना एक मार्गदर्शन करना चाहते हैं या एक 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 सोच पैदा करना चाहते हैं जिससे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी हो, लॉ एंड ऑर्डर भी हो और ग्लोबल ग्लोबल पीस भी हो। तो उसके बीच में अभी हम देख सकते हैं कि दो मेजर इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। एक है रशिया और यूक्रेन का।
जी
रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे बहुत ही टेंशन बढ़ती जा रही है, पूरी तरह से युद्ध की संभावना है वहां पे। तो उसमें
जी
क्या है कि फॉर्मर नेटो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज ने एक स्टेंस लिया है यूक्रेन को सपोर्ट करने का, दूसरी साइड में रशिया है और रशिया के साथ चाइना उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डायनामिक्स बन रही है। उस डायनामिक्स के को देखने के लिए अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज का क्या रवैया होना चाहिए। नंबर दो, साउथ चाइना सी में भी गंभीरता जताई जा रही है, और इस गंभीरता में क्या है कि ताइवान ताइवान की इंडिपेंडेंस के ऊपर इश्यूज हैं। क्या चाइना वॉर वॉर लड़ेगा ताइवान को मिक्स करने, एनेक्स करने के लिए? इसके ऊपर भी काफी मिलिट्री इक्विजिशन है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपना अपना का फोकस किया है इस एरिया पे। तो इसलिए सभी ये डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ये चिंतित हैं कि क्या होगा, क्या ध्रुवीकरण होने जा रहे हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग होगी, और जो अभी दो मेजर इश्यू हैं, रशिया यूक्रेन और चाइना ताइवान, तो इन मुद्दों के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस रहेगा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज को क्या स्टेंस लेना चाहिए, कैसे यूएन में जाना चाहिए या यूएन से बाहर ही कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसलिए ये बहुत ही अहम है।
जी डॉक्टर अहलावत, भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी भी यहाँ पे आएंगे इस मीटिंग के लिए। तो क्या ये मीटिंग एकाएक बुलाई गई है यूक्रेन बॉर्डर पे, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन हुई है उसको देखते हुए, क्या और क्या ये मीटिंग पहले से ही प्रस्तावित थी क्वाड की, कि अब प्रधानमंत्री और हेड ऑफ द स्टेट मिल चुके हैं पिछले साल सितंबर में, तो उसका अगला जो स्टेप है लॉजिकल स्टेप होता है कि देश दूसरे इन देशों के विदेश मंत्री मिले या एनएसए मिले, तो हमें इसको किस हिसाब से देखना चाहिए?
इसमें क्या है कि देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान यूनाइटेड स्टेट्स के अलायंस पार्टनर्स रहे हैं और इंडिया अभी सिर्फ पार्टनर है। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या है कि जब ये मीटिंग होगी तो लगता नहीं कि ये पहले प्री फिक्स्ड थी, क्योंकि ये मीटिंग पहले भी होने वाली थी, लेकिन इसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कोविड पॉजिटिव निकले,
जी
तो इसलिए कोविड पॉजिटिव निकले वो नहीं आ पा रहे थे। ये था कि वर्चुअल मीटिंग हो, लेकिन वर्चुअल की बजाय फेस टू फेस है, इसलिए अभी तक इसमें कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई है मीटिंग की, ये ओपन एंडेड है। नंबर दो ये है कि इसमें इंडिया एक कंट्री है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का अलायंस पार्टनर नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
जी, लेकिन हमारा यूएस के साथ 2+2 डायलॉग है, तो इसका मतलब हमारा भी एक सिग्निफिकेंट रिलेशन है यूएस के साथ।
यस, इंडिया यूएस ने 4 बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसके बाद यदि आप 2+2 कहते हैं तो 2+2 तो इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, 2+2 जापान के साथ भी है, और पीछे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, उस टाइम भी 2+2 इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया का 2+2 है।
जी,
जहां तक सवाल है कि यूक्रेन को लेके है ये, इसमें भारत का एक जो पॉलिसी स्टेंस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि शार्प एज लाइन पे है इंडिया। इंडिया के रशिया के साथ भी बहुत गहरे और अच्छे संबंध हैं, क्योंकि इंडिया का 70% जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है वो रशिया से आता है।
जी,
इसके अलावा इंडिया और रशिया अभी अभी ब्रह्मोस मिसाइल का जैसे एक्सपोर्ट करने लगे, तो वो एक जॉइंट वेंचर है सुपरसोनिक मिसाइल का।
जी
और जो अहम चीज है कि जैसे ही लास्ट मंथ पुटिन आए इंडिया में, तो S-400 मिसाइल का भी डिलीवरी इंडिया में स्टार्ट हो गया है।
जी,
लेकिन ये क्या है कि अभी रशिया और चाइना के बीच में भी संबंध बहुत ही गहरे होते जा रहे हैं, तो उसको लेके इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में अभी काफी दरार है, काफी इश्यूज हैं, तो इसलिए उसको देखते हुए अब इंडिया चाइना रशिया के ऊपर पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकता, तो इसको अपना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, और उस डाइवर्सिफिकेशन के तहत इसने अपना पॉलिसी चेंज किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाए और क्वेड का भी मेंबर बना है, इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करने लगे हैं। तो जयशंकर का इधर इसमें बहुत ही वो क्रूशियल रोल होगा कि क्या स्टेंस लिया जाए, क्या इंडिया इंडिया रशिया के अगेंस्ट जाएगा। और आपको इट विल बी इंटरेस्टिंग कि भारत यूक्रेन को भी वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, क्या इंडिया अपनी मार्केट लूज करेगा।
जी,
तो अभी एक तरह से ये बहुत ही क्रूशियल है कि इंडिया को क्या स्टेंस लेना चाहिए।
जी, क्या भारत ने अपनी इस स्थिति पर कोई बयान दिया है, अपना रुख बताया है कि वो किस चीज को सपोर्ट करते हैं, उनका क्या स्टांस रहेगा?
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन मिस्टर बागची ने एक स्टेटमेंट पास की है, और उन्होंने ये बड़ा ही कैलकुलेटेड और वे में उन्होंने बोला है कि हम सपोर्ट करते हैं कि ये पीसफुली रिजोल्व हो जाए, शांतिपूर्वक इसका समाधान निकाला जाए, वॉर की तरफ ना जाया जाए। तो ये तो एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, लेकिन जब रियल में वॉर होता है या और आगे स्ट्रेस बढ़ती है, एक टाइम आता है या तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा एक ग्रुप अगेंस्ट द अदर, और यू हैव टू एब्सटेन। एब्सटेन यदि इंडिया करता है, जनरली इंडिया ने पहले भी ये रशिया यूक्रेन का हुआ था तो उस टाइम इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया था।
जी,
तो अभी भी इंडिया शायद एब्सटेन करेगा, लेकिन अब इंडिया एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, और कंट्रीज देखते हैं इंडिया क्या स्टैंड लेगा। तो इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है कि हम अपने हिसाब से लेंगे डिसीजन, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन ये कब तक इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया को भी एक बड़ी पावर होने के नाते एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और इंडिया को स्टैंड इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि इंडियन मिलिट्री चाइनीज बॉर्डर के ऊपर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। डोकलाम इशू हुआ, उसके बाद पेंगोंग लेक पे हुआ, और वहां पे इंडियन सोल्जर्स का भी वो मार्टायरडम हुआ। तो अब इंडिया चाइना में काफी कंफ्लिक्ट बढ़ती जा रही है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमर्ज हो रहा है। कल ना यदि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में जाना पड़े तो विच ग्रुप विल सपोर्ट, अदर देश भी एब्सटेन कर सकते। इंडिया हैज टू प्ले इट्स कार्ड्स वेरी वेल, वेरी कैलकुलेटेड वे।
डॉक्टर दलबीर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल जी, मैं ये अपॉर्चुनिटी देने का।